धरती पर एक दिन बादल भी गरज उठे ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोले बस चुपके से घूट लिया दम। और एक दिन
माटी रूठी आज हमसे बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जन्म ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका गिर गया तू मन से।
जलती दुनिया को बुझा ले बुझ पे दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले पतझड़ में फूल खिला ले। बड़ी भूल हुई है हमसे ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी
दे दे माफी घायल है बढ़ते कदम। कर दे तू अब मरहम।
शांति। साधना के 16 दिन पूरे हुए। इन 16 दिनों में नई अनुभूतियां सबने अपने जीवन में अनुभव की होगी। ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है और इस एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए, हमारी अपने विषय में जो मान्यताएं थी बहुत सी मान्यताओं को ठेस पहुंची। हमारी अपने विषय में अपने स्वभाव के विषय में अपने संस्कारों के विषय में हमारा जो ज्ञान था उसमें हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। 5 लक्ष्य के साथ इस भट्टी की शुरुआत की थी 21 दिनों की, और जिसकी तैयारी तो बहुत लंबे समय से हो रही। 108 दिनों की इस भट्टी का आज का 104वां दिन, 103 दिन पूरे हुए और सभी ने अनुभव किया होगा कि हर दिन कैसे नया था। जिस ऊर्जा के बीच हम जीते हैं, रहते हैं, उस ऊर्जा से हम अनभिज्ञ थे और वो ऊर्जा ही हमें चला रही है। सुबह की साकार मुरली, सुबह की साकार मुरली आत्मा की ताकत से यह शरीर चलता है। इस शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। आत्मा की ताकत से यह शरीर चलता है। इस शरीर को चलाने के लिए किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आत्मा स्वयंभू है और आत्मा की ही शक्ति से यह शरीर कार्यान्वित हो रहा है। परंतु शरीर को बाहर के पोषण की आदत पड़ गई है और वो आदत इतनी गहरी है कि व्यसन है। उसी व्यसन से मुक्त होना इस भट्टी का लक्ष्य है और भट्टी की शुरुआत से अब तक कई सारे विषयों पर चर्चा हुई है। ऊर्जा पर चर्चा हुई, शरीर पर चर्चा हुई, बीमारियों पर चर्चा हुई और डिटॉक्स सिम्टम्स अलग अलग रीति से अलग अलग आत्माओं को जो इसे 21 दिनों में हो रहा है उसकी भी चर्चा हुई और ऐसे बहुत से विषय हैं शायद जिनकी चर्चा ना हो। बहुत सी बातें हमें अपने अनुभव से जाननी होगी जो कहीं लिखी नहीं है, जो किसी ने कही नहीं है, जो कहीं पर वर्णन नहीं है जिन बातों का। तो इन 21 दिनों में, इन 16 दिनों में पिछले हम शरीर को रिफाइंड और रिफाइंड करते जा रहे हैं, अपने आहार को रिफाइंड रिफाइंड करते जा रहे हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो एक सबसे मूलभूत मान्यता संसार में है, सॉलिड फूड की आवश्यकता, बिना सॉलिड फूड के जिया नहीं जा सकता, बिना सॉलिड फूड के वजन गिर जाता है, बिना सॉलिड फूड के बीमारियां आती है, बिना सॉलिड फूड के हम जीवन का लुफ्त, जीवन को कैसे एंजॉय करें। तो अभी पिछले 16 दिनों में सभी ने देखा होगा कि कितना सहज लग रहा है और कितना नेचुरल लग रहा है, क्योंकि ब्रदरियन हमारा नेचुरल स्वभाव है। हम इस धरती पर जब आए थे तो ब्रदरियन थे, केवल ब्रेथ, उसके अतिरिक्त और किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे फिजिकल फूड, मटेरियल फूड, शाकाहारी भोजन, स्थूल भोजन, ग्रॉस फूड हम अपने अंदर डालते गए, अपवित्रता चालू हो गई। अपवित्रता की कहानी भोजन से शुरू होती है। जब शरीर शुद्ध है और आत्मा भी शुद्ध है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। यह डिपेंडेंस, फूड डिपेंडेंस, फूड एडिक्शन कब बन गया हमें पता ही नहीं चला। इसीलिए इस भट्टी से हमें रिवर्स जाना है। जब इस धरती पर आए थे तो ब्रदारियन थे, न भोजन न किसी चीज की आवश्यकता, न खाने की न पीने की। फिर धीरे धीरे लिक्विडेरियन बने, लिक्विड्स, फिर धीरे धीरे फ्रूटेरियन, फ्रूट्स लेने लगे, फिर धीरे धीरे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। ऐसी ये यात्रा रही। अब धीरे धीरे हमें रिवर्स करना है, नॉन वेज से वेज, वेज से वीगन, वीगन की यात्रा से रॉ वीगन, रॉ वीगन से फ्रूटेरियन, फ्रूटेरियन से लिक्विडेरियन, और लिक्विडेरियन से वापस ब्रदारियन। और वो इसी संगम युग पर करना है। और इस भट्टी का लक्ष्य है कम से कम सभी ब्रदारियन लिक्विडेरियन लेवल तक पहुंचे। और जैसे जैसे ये भट्टी पूरी हो रही है, हर एक को अपनी प्लानिंग करनी होगी। 5 दिन के बाद ये भट्टी पूरी होगी और 1 तारीख के से फिर इस भट्टी की कोई चर्चा नहीं होगी। फिर हर एक को अपने मार्ग पर चलना होगा, हर एक स्वतंत्र है, परंतु उसकी थोड़ी सी योजना अब से बना के रखनी है। और अब तक सबने ये जाना होगा, जब सॉलिड फूड पर थे तो क्या था, और जब अब लिक्विड फूड पर है तो क्या है। ऐसे बहुत कम है जिनका वजन गिरा है। अधिकतर यही अनुभव सुना रहे हैं कि उनका वजन स्थिर है, या पहले गिरा था फिर स्थिर हो गया और अभी बढ़ रहा है। और धीरे धीरे ये भी अनुभूति में आएगा कि सॉलिड फूड ही हमारे सभी दुखों का कारण रहा है। चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी, चाहे शरीर की बीमारियां हो, या मानसिक उथल पुथल हो, या कोई बीमार हो, बीमारी हो, या कोई संबंधों में कड़वाहट हो, कोई भी परिस्थिति, सभी का संबंध कहीं ना कहीं सॉलिड फूड से है। और जैसे ही सॉलिड फूड से हम लिक्विड फूड की तरफ आए, जैसे ही च्यूइंग, बाइटिंग और रिपिंग, चबाना, काटना और फाड़ना दांतों से बंद किया, ये क्या अनुभव होने लगा। बचपन की मेमोरीज बाहर आने लगी, बचपन के घाव जैसे हरे हो गए, किसी को रोना आ रहा है, किसी को दुख हो रहा है, किसी को पीटने की इच्छा हो रही है, किसी को पश्चाताप करने की इच्छा हो रही है, किसी को अपराध बोध हो रहा है। कौन कौन से कहां कहां के पुराने संस्कार जागृत हो रहे। सॉलिड फूड ने उन सभी संस्कारों को ढक रखा था। जैसे ही सॉलिड फूड निकल गया, वैसे ही वो सब उभर कर बाहर आ रहे। और किसी किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है, और किसी किसी को ये सब से निकलकर एक शांत अवस्था में स्थिति आ गई है। सारे डिटॉक्स हुए और समाप्त हो गए। नीचे से इमोशंस निकले, संस्कार निकले और समाप्त हो गए। फिजिकल डिटॉक्स हुआ, खत्म हो गया, इमोशंस खत्म हो गए पुराने। अब मन एकदम शांत है, स्थिर है, एकाग्र है। ये अवस्था आई है, ऐसा लग रहा है जैसे उड़ रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं कि अभी भट्टी के बाद क्या करना है। करना आपको है, मैं नहीं। सबका अपना अपना निर्णय है। चाहे तो इसी लिक्विड डाइट को अपना जीवन बना ले। वापस सॉलिड पर जाना ही क्यों है। इसी को और रिफाइन करते जाओ। इसी लिक्विड फूड के साथ खेलते रहो, इसी लिक्विड फूड को एंजॉय करते रहो। वो रोटी दाल सब्जी की का जो जीवन था समाप्त, वो जो चीविंग का जीवन था, दुख का जीवन था, वो पशु वृत्तियां थी, एनिमल इंस्टिंक्ट से सारे, उसको सदा के लिए बाय बाय। और जो सोचते हैं ये बहुत कठिन है क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है, ये ना समझ लेना कि 21 दिन कर लिए तो हो गया। ये केवल इनिशिएशन था, प्राणिक इनिशिएशन। इन 21 दिनों के बाद हो सकता है किसी को एक साल, किसी को दो साल, किसी को कुछ साल लगेंगे इस कॉन्सेप्ट को, इस पूरी यात्रा को समझने के लिए, क्योंकि प्राणिक यात्रा इतनी सहज नहीं है, लंबा समय लगता है, कुछ साल लग जाएंगे। भोजन का हमारे शरीर से, हमारे मन से, आत्मा से क्या संबंध है ये जानने के लिए, इसके लिए जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे डिसीजन लेना है। और हम ये चाहेंगे ये भट्टी पूरी होने के बाद हो सके तो कुछ 3-4 दिन लिक्विड पर ही चलाओ अपने आप से, बिना ग्रुप के सपोर्ट के, बिना इस मॉर्निंग क्लास के। एक दूसरा, यदि कुछ लोग एक साथ ये यात्रा कर रहे हैं और वो नजदीक रहते हैं या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो वो अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, उसमें अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे एक दूसरों के साथ, क्योंकि इसमें ग्रुप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है शुरुआती दिनों में। बाद में जब आप शक्तिशाली बन जाएंगे तो किसी ग्रुप की आवश्यकता नहीं, परंतु इनिशियल फेजेस में ये सब बहुत मदद करेगा। तीसरा, 22वें दिन क्या करना है, ये प्रश्न है। तो 22वें दिन, कई लोगों ने 21 दिन तक ही इसको रखा है और 22वें दिन से वापस सॉलिड फूड पर आना है। उसकी चर्चा हम थोड़ी सी कर चुके हैं, जब 9 दिन जिन्होंने ये भट्टी की और 10वें दिन से जो जिन्होंने सॉलिड फूड चालू किया, उस समय थोड़ी सी चर्चा हुई थी, थोड़ी चर्चा और 1-2 दिनों में होगी। अगर हो सके तो एक साथ मिलकर सॉलिड फूड पर आओ, अगर आना है तो। जिन्होंने साथ में किया है तो वो एक साथ ग्रुप लंच मिल बैठकर, गोपाल काला, एक साथ बैठकर प्लान्ड सॉलिड फूड, प्लानिंग करो कि आज दोपहर का लंच सॉलिड करना है 21 दिनों के लिक्विड के बाद, परंतु करेंगे तो पिकनिक करेंगे और बिना अटैचमेंट के करेंगे। ग्रुप में करेंगे तो अटैचमेंट नहीं होगी, ये एक भी है। दूसरा, हमने ये भी कहा था अकेले में करो, हाँ अकेले में करो यदि कोई भी साथी नहीं है तो, प्राणिक साथी नहीं है, ब्रदरियन फ्रेंड नहीं है तो। परंतु यदि आपके साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं तो सब लोग मिल के करो, तो एक लंच की प्लानिंग हो सकती है, एक ये भी किया जा सकता है। और धीरे धीरे अपने संबंध को समझना है। सॉलिड फूड लेंगे 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 3-4 दिन सॉलिड लेके देखो और फिर कुछ और समझ में आएगा कि जब लिक्विड में थे तो क्या हो रहा था, सॉलिड में आ गए तो क्या हो रहा है, नींद का क्या हुआ। जो 3 क्राइटेरिया, और एक चीज और हम देखेंगे 21 दिनों के अंत में, पहले दिन और 21वें दिन, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हुए कि नहीं हुए। पहला, वेट स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा, एनर्जी लेवल कैसा रहा, और तीसरा, नींद। जरूरी नहीं है कि सबकी नींद कम हो जाए, कईयों को भयंकर नींद का प्रकोप हो रहा है, दिन रात नींद, 24 घंटे नींद, ये भी हो सकता है। तो नींद तो एक ऐसी चीज है कि जो बहुत रिफाइंड है, जिसके विषय में हमें समझना होगा, उसका संबंध केवल भोजन से ही नहीं है, बहुत सारी दूसरी चीजों से भी है, दिनचर्या से है, क्या कार्य कर रहे हैं उनसे है, क्या खा रहे हैं, संबंध कैसे है, मानसिक स्थिति कैसी है, बहुत सारी चीजों से है, दिनचर्या कैसी है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, बीमारियां कितनी है पहले से, दवाइयां क्या क्या चल रही है, ये बहुत सी चीजें जिनके साथ इसका संबंध है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए अगले 5 दिनों की प्लानिंग करनी है। 5 दिनों में प्लानिंग करनी है, 22वें दिन से क्या करना है आगे। और एक और अच्छा अभ्यास है, अभी 1 से 21 दिन किया तो 8 दिन वापस सॉलिड फूड पर चले जाओ। 8 दिन सॉलिड फूड भी एंजॉय करके देखो क्या होता है। और फिर 28 तारीख को पूरा होगा ना, 1 से 8 मार्च सॉलिड फूड, और वापस फिर अपनी एक 21 दिन की 8 या 9 या 10 तारीख से 21 दिन की अपनी स्वयं की एक भट्टी चालू करो, खुद की, बिना किसी सपोर्ट के, बिना ग्रुप के सपोर्ट के, बिना किसी क्लास के, या 9 दिन की। एक ये, दूसरा, कई लोग जो इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं और जो इतना पक्का जिनको विश्वास होता है कि सॉलिड फूड ही दुख का कारण है, सॉलिड फूड की वजह से इतने वर्षों से कोई संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा था जो कि इसे 21 दिनों में हो गया, और जिनको पूर्ण विश्वास हो गया है कि यही एकमात्र मार्ग है क्योंकि बाकी सब करके देख लिया है इतने सालों में, अब ये एक ही बचा है, इसलिए उनको वापस सॉलिड की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, वो लिक्विड में ही बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं अपनी दिनचर्या की, अपने वेट की, अपनी एनर्जी लेवल की, और सबसे महत्वपूर्ण है आनंद की अवस्था, निरंतर आनंद की अवस्था रहे। अभी यहाँ जो कुछ बातों की चर्चा हुई ये संपूर्ण नहीं है, बहुत सी बातें हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर नहीं हुई, वो शायद आगे कभी होगी, परंतु वो सब ऐसी बातें हैं कि आपको खुद ही अनुभव करनी है अपने अनुभव से। अभी जो मुरली आप पढ़ोगे वो अलग रीति से पढ़ोगे, जैसे आज की मुरली का कितना पावरफुल वाक्य है, आत्मा कैसे चल, शरीर कैसे चल रहा है, आत्मा की ताकत से शरीर चल रहा है। बाबा के वही महावाक्य जो पहले पढ़ते थे, पर अब जो पढ़ रहे अब इसमें अंतर है, समझ में अंतर है, और आगे की हर एक की यात्रा स्वयं की यात्रा होगी, सेल्फ की यात्रा होगी, और इस यात्रा में स्वयं को इंडिपेंडेंट हो जाना होगा। और एक टूल जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, उस दिन भी थोड़ी सी चर्चा की थी, जो आपके बहुत काम आएगा, वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी अर्थात स्वाध्याय, उसकी आप जब तक खुद नहीं पढ़ते तब तक वो पक्का नहीं होता है, केवल सुनना काफी नहीं है, उसके विषय में गंभीरता से अध्ययन करना पड़ेगा। और इस अध्ययन के लिए आज जो हम टूल ले रहे हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज का जो टूल है 17वां वो है इंग्लिश, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश भाषा। उस दिन भी किसी ने इंग्लिश के विषय में प्रश्न पूछा था और कुछ बातें बताई थी, और अभी जो प्रश्न आ रहे हैं वो लगभग वही रिपीट रिपीट प्रश्न है, अनुभव अलग अलग है, फिर भी जिनको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि जब उनका प्रश्न लिया जाए तभी उत्तर मिलेगा, हो सकता है किसी और के प्रश्न में आपको अपना उत्तर मिलेगा, या फिर जरूरी नहीं है कि प्रश्न उत्तरों की इन श्रृंखलाओं में ही वो उत्तर मिलेंगे। कई सारे उत्तर तो हमें अमृत वेला मिलते हैं, कई सारे उत्तर तो हमें बाबा से डायरेक्ट मिलते हैं, और वो ही उत्तर सबसे ऑथेंटिक होते हैं, सबसे पावरफुल। और हमारे जीवन के प्रश्नों के उत्तर किसी और से कैसे मिल सकते हैं, वो भी एक, जितना हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होगा उस निराकार से अपने आप सब उत्तर मिलने लगेंगे, किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते, प्रश्न ही नष्ट हो जाए, प्रश्न ही गिर जाए, समाप्त हो जाए, तो आज का जो टूल है वो है इंग्लिश भाषा। ये सारा ज्ञान, वैसे तो रामायण में भी इस ज्ञान की चर्चा है, ये ज्ञान कोई नया नहीं है, महाभारत में इसकी चर्चा है, रामायण में इसकी चर्चा है, और ये ज्ञान वास्तव तो भारत में ही निकला है। कितने ऋषि मुनि तप करने बैठते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कुछ खाते थे क्या? पहाड़ों पर तपस्या करते थे, जहां बर्फ होती थी वहां क्या होता था, कोई फल होता था नहीं। वो किस पर जीते थे? ऊर्जा पर जीते थे, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति पर जीते थे, संजीवनी शक्ति पर जीते थे। वो ऊर्जा, वो कुंडलिनी शक्ति की खोज कहां हुई? प्राण शब्द कहां निकला? भारत। वो पंच प्राणों की चर्चा कहां है? भारत। रामायण में वर्णन है कितने मुनियों के आश्रम में श्री राम घूम रहे, और वहां पर वाल्मीकि रामायण में बार बार वर्णन आता है। अभी अभी राम उनसे मिले, किस ऋषि से? Who has been living on air for 10,000s of years, जो कि केवल वायु पर जी रहे हजारों लाखों सालों से। ऐसा कई जगह वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, और ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण इतिहास में है। क्रिश्चियंस में कितने सारे उदाहरण है, भारतीय इतिहास में कितने उदाहरण है, चाइना में कितने उदाहरण है, तिब्बत में कितने उदाहरण है, अमेरिका के संतों में कितने उदाहरण है, अफ्रीका के कितने उदाहरण है, हर देश में इसकी चर्चा है। परंतु हाँ, शायद ये नाम उस समय नहीं होगा। तो इस ज्ञान का वर्णन सब जगह है, परंतु एज अ साइंस ये कुछ है, ये केवल और केवल इंग्लिश भाषा में ही लिखा गया है, इंग्लिश भाषा में इसका वर्णन है। इसके लिए आज का हमारा जो टूल है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इस यात्रा में आगे बढ़ना है इस भट्टी के बाद में भी, तो आपको कुछ किताबें पढ़नी होगी, कुछ अध्ययन करना होगा, और वो सारा अध्ययन इंग्लिश में है। किसी भी हिंदी में, संस्कृत में, कोई और भाषा में ये लिखा हुआ नहीं है। हाँ, पलो पर किताबें हैं हिंदी में, नेचर क्यूर पर, नेचुरोपैथी पर, पलो के फायदे, कच्चा आहार, ये सब पर हिंदी में किताबें लिखी हुई है, पर इंग्लिश में कोई भी किताब प्राणिक लिविंग पर लिखी हुई नहीं है, लिविंग ऑन लाइट पर लिखी हुई नहीं है, प्राणिक नरिशमेंट पर लिखी हुई नहीं है, जो सारी किताबें लिखी गई है, और वो किताबें बड़ी गुप्त है, इतनी फेमस नहीं है संसार में, क्योंकि ऐसी किताबें कभी फेमस होने भी नहीं देगा साइंस। इस तरह के जो भी रिसर्च हुए है, क्योंकि अगर ऐसे रिसर्च पब्लिश हो गए, फूड इंडस्ट्री और ड्रग इंडस्ट्री का क्या होगा? संसार किससे चल रहा है? फूड इंडस्ट्री सबसे बड़ा मार्केट किसका है? छोटा सा छोटा गांव, वहां पर भी सब रहता है, छोटे छोटे पैकेट्स, सब कुछ होता है वहां, फूड इंडस्ट्री का मार्केट बहुत है। और छोटे से छोटा गांव, वहां कोई ना हो परंतु डॉक्टर तो जरूर होगा एक, भले डिग्रियां ना हो उसके पास, झोला छाप सर प्रकार के डॉक्टर होंगे, और उनकी दवाइयां, तो दवाइयों की दुकानें, फूड इंडस्ट्री और ड्रग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, सबसे ज्यादा इनकम इनका है वर्तमान समय। और ये अगर कॉन्सेप्ट बाहर आ गया कि आप बिना दवाइयों के और बिना भोजन के भी स्वस्थ रह सकते हो, तो कितने दुखी होंगे संसार के लोग, उनका इनकम का क्या होगा? सारी हॉस्पिटल्स बंद हो जाए फिर उसका क्या होगा? इसीलिए धीरे धीरे आपको इसको, इस विषय में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बहुत सी किताबें लिखी हुई है, एक बहुत प्रसिद्ध किताब है लिविंग ऑन लाइट, प्राणिक नरिशमेंट, जसमहीन, ये एक ऑस्ट्रेलियन लेडी है जिसने 90s में बहुत सारे अपने पर प्रयोग किए, और अपने सारे अनुभवों को उसने इस किताब में, 30 साल पुरानी किताब है पर उसके बहुत सारे अपडेटेड वर्शन है किताब के, फूड ऑफ गॉड्स करके एक किताब है, ऐसी बहुत सारी बुक्स है, पर ये सारी किताबें इंग्लिश में लिखी हुई है, पर बहुत सिंपल इंग्लिश है, पढ़ सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक इसके पहले भी कहा था, एक बहुत प्रसिद्ध किताब है हायर कॉन्शियसनेस ओटिमा हिल्टन की, जिसमें उसने बहुत गहरा चिंतन किया है मनुष्य के विषय में, बहुत सारे रिसर्च करके, वो भी किताब है मैंस हायर कॉन्शियसनेस ओटिमा हिल्टन। वाइले ब्रुक्स की बुक्स है बहुत सारी, वो पढ़ सकते हैं। जसमहीन की किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं। हेनरी मोफोर्ड की बुक्स है वो पढ़ सकते हैं। और अभी तो जेरोम शाह से लेके बहुत सारे नए नए ब्रदरियंस हैं, उन्होंने अपनी अपनी अनुभव लिखे हैं किताबों में। कई लोगों ने अपने 21-21 दिन के अनुभव लिखे हैं कि हम 21 दिन हमने कैसे बिताए, पहला दिन क्या हुआ, दूसरा दिन क्या हुआ, तीसरा दिन क्या हुआ, चौथा दिन क्या हुआ। और कईयों ने अपने प्रकृति के साथ के अनुभव लिखे हैं। अभी तो लेटेस्ट में है डार्क रिट्रीट्स, डार्क रिट्रीट कराते हैं लोग। डार्क रिट्रीट अर्थात 14 दिन तक अंधेरे कमरे में रहना। एक बंगला ले लेते हैं, उसमें 14 दिन तक प्रकाश हो ही ना, केवल अंधेरा। उसमें मनुष्य की चेतना के क्या क्या नए नई बातें निकल कर बाहर आती है, उसको कहते हैं डार्क रिट्रीट्स। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि इंग्लिश भाषा में कैद है। तो इसीलिए आज का जो टूल है हमारा, वो है इंग्लिश भाषा। इस भाषा को हम कैसे सीखें या इसको जाने, इसकी हम कुछ बातें अभी देखेंगे। तो क्या क्या करना है, सबसे पहला तो वोकैबुलरी। क्या करेंगे, वोकैबुलरी अर्थात शब्दकोश, जो उस दिन भी बताया, रोज नए नए शब्द सीखो। जैसे लॉकडाउन, अगर ये शब्द 5 साल पहले कोई बोलता, 6 साल पहले, कुछ समझ नहीं आता ये लॉकडाउन क्या होता है। आज अभी ये शब्द गांव का कोई अनपढ़, उसको भी समझ में आता है कि लॉकडाउन क्या है। क्यों समझ में आया उसको, उसने झेला है। धीरे धीरे शब्द कॉमन हो जाते हैं। क्वारंटीन शब्द जो है, पहले शायद कोई नहीं यूज करता होगा, अभी सब लोग यूज करते हैं, सबको समझता भी है। तो सबसे पहला क्या करना है, वोकैबुलरी को बढ़ाना है। उसके लिए क्या करेंगे, डिक्शनरी। अपने पास एक डिक्शनरी हो, इंग्लिश से हिंदी वाली। अगर बुक नहीं रख सकते तो कितने हजारों फ्री ऐप अवेलेबल है मोबाइल पर। गूगल प्ले स्टोर से जाकर फ्री ऐप डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, और जैसे ही कोई नया शब्द मिले तुरंत उसको अर्थ ढूंढो उसका क्या है, हर नए शब्द का अर्थ। मुरलियों में आता है एक्सकर्शन, ये एक्सकर्शन क्या होता है, अर्थ ढूंढो हर नए शब्द का, अर्थ ढूंढो। जो भी मुरलियों में नए नए शब्द आते हैं इंग्लिश के, एटलीस्ट उनको, उनके सारे अर्थ ढूंढो। सोवरेनिटी, ये सोवरेनिटी क्या होता है, अर्थ ढूंढो उसका। किंगडम, किंगडम मतलब क्या, उसका अर्थ ढूंढो। इंग्लिश में जितने शब्द आते, फॉलो, फॉलो मतलब क्या, नए नए शब्द, और हिंदी में भी उनके नए अर्थ पता चलेंगे। हाँ, वो कुछ कुछ शब्द तो इंग्लिश के ऐसे है, इंग्लिश ही बोलते हैं। जैसे मुरलियों में आता है फॉलो फादर, फॉलो के 3 अर्थ होते हैं। एक होता है अनुगमन करना, अनुकरण करना, अनुकरण, अनुगमन, अनुसरण। कौन बोलता है ये शब्द, क्या बोलते हैं, फॉलो फादर, बाप का अनुकरण करो। कौन बोलता है, बाप का अनुसरण करो, बाप का अनुगमन करो। पर इन तीनों अर्थों में अलग अलग अर्थ है। हिंदी भाषा बहुत गहरी भी है, वैसे इंग्लिश भाषा भी गहरी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आज से नए नए शब्द ढूंढने। हो सके तो एक डायरी बना लो, एक डायरी, उसमें तारीख रखो, ऊपर डेट लिखो, और फिर इंग्लिश शब्द और उसका हिंदी अर्थ, इंग्लिश शब्द और हिंदी अर्थ। एक दूसरा, कोई भी अर्थ ढूंढने से पहले मन में सोचो इसका क्या अर्थ हो सकता है। पहले खुद थोड़ा सा तर्क लगाओ, आगे पीछे जोड़ के देखो। कई शब्द तो जोड़ जोड़ के पता चलते हैं क्या है। क्या करना है, जोड़ के देखना है। उसके बाद में बुक्स पढ़ना चालू करो। और हमारे लिए तो हम कहेंगे इंग्लिश मुरली पढ़ना चालू करो। क्या कहेंगे? इंग्लिश मुरली रोज पढ़ना चालू करो। पूरी मुरली नहीं पढ़ सकते, कम से कम एक पेज इंग्लिश। हिंदी में भले पढ़ो, हिंदी में भले सेंटर पर जाते हैं तो मुरली सुनो, पर घर में आने के बाद 24 घंटे में एक बार पूरी मुरली इंग्लिश में पढ़नी है। और इंग्लिश में जब पढ़ेंगे, जैसे आज की मुरली, स्वीट चिल्ड्रेन, दिस इज नाउ योर फाइनल बर्थ, द प्ले इज कमिंग टू एन एंड एंड यू देयरफॉर हैव टू बिकम प्योर एंड रिटर्न होम, द हिस्ट्री विल देन रिपीट फ्रॉम द गोल्डन एज। ये क्या था? इसेंस। इसेंस का अर्थ ढूंढो, क्या होता है इसेंस अर्थात क्या? तो इसेंस के कई सारे अर्थ मिलेंगे। इसेंस अर्थात सुगंध, सुगंध भी होता है। इसेंस अर्थात सार भी होता है। उसके समानार्थी शब्द ढूंढो। अब दूसरा काम क्या है? समानार्थी शब्द ढूंढना। क्या क्या समानार्थी शब्द हो सकते हो उसके? व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द प्ले? जिस्ट क्या है इसका? बाप आए हैं तुम्हें नटशेल में ज्ञान सुनाने। नटशेल अर्थात तुम्हें इसेंस सुनाने, सार सुनाने, नटशेल में सुनाने। ऐसे ढेर सारे शब्द धीरे धीरे पता चलेंगे फिर। तो वो सारे शब्दों को एक जगह एकत्र करते जाओ। पहला एक शब्द आया इसेंस, फिर कुछ दिनों के बाद नटशेल पता चला, फिर दोनों सबको जोड़ते जाना है। तो ये काम करना है। जैसे प्रश्न, विच वंडर कैन यू ओनली यू चिल्ड्रेन परफॉर्म वाइल लुकिंग आफ्टर योर होम्स एंड फैमिलीज। यह है प्रश्न। उत्तर, वाइल लुकिंग आफ्टर योर होम्स, टू लुक आफ्टर अर्थात क्या? कई सारे इंग्लिश शब्द होते, लुक का तो अर्थ पता है, लुक आफ्टर पता नहीं। लुक आफ्टर अर्थात ध्यान रखना, देख रेख करना। तो कई सारे वर्ब होते हैं, उनके सामने ऐसे शब्द ऐड होते हैं, इनको वर्बल फ्रेज कहा जाता है इंग्लिश में। यू हैव टू ब्रेक यूर अटैचमेंट टू एवरी वन, ब्रेक टू, फॉरगेट ऑल ओल्ड थिंग्स। अब इंग्लिश शब्द क्या है? एफ ओ आर जी ई टी। लोग इसको कहते हैं फॉरगेट, ये फॉरगेट नहीं है, ये है फॉरगेट। पर एफ ओ आर फॉर है लिखने में, पर हिंदी में, पर बोलते समय क्या होता है? फॉरगेट। हिंदी में जो है वो पढ़ा जाता है, इंग्लिश में वैसा नहीं है। इंग्लिश में बहुत सारे शब्द साइलेंट होते हैं। जैसे सूक्ष्म को इंग्लिश में कहते हैं एस यू बी टी एल ई। लोग इसको पढ़ते सबटल सबटल करते रहते हैं। ये सबटल नहीं है, बी साइलेंट है, सटल, बी साइलेंट, सबटल वर्ल्ड। तो इंग्लिश में आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो अर्थ क्या है और दूसरा उसका प्रोनाउंस कैसे किया जाता है उसे, उसका उच्चारण। हिंदी में सीधा दिखता है मंदिरा, सीधा दिखता है, पर इंग्लिश में वैसा नहीं होता है। इंग्लिश में लिखा कुछ होता है और पढ़ा कुछ और जाता है। इंग्लिश में लिखा होता है वारिस, तुम्हें बाप का सच्चा वारिस बनना है, इंग्लिश में एच ई आई आर। इंग्लिश में अगर कोई पढ़े तो इसको पढ़ेगा हेयर, हेयर, पर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है एयर, एयर, जैसे ए आई आर एयर होता है ना। यू हैव टू बिकम बाबास एयर, सो इट इज हेयर, पर लिखा कैसे जा रहा है? एच ई आई आर, बाप का वारिस बनना है तुम्हें। वैसे ही तुम्हारे सिर पर जन्म जन्म का कर्जा है, डी ई बी टी। लोग पढ़ते इसे डेप्थ, डेप्थ नहीं है, डेट, बी साइलेंट है। नॉलेज, गॉडेस, इंग्लिश में इवन मुरलियों में भी गलत लिख के आता है, गॉडेजेस, गॉडेसेस। उसी तरह देवता को क्या कहते हैं? इंग्लिश में, हिंदी में ही गलत लिख के आता है डीटी। डीटी नाम का कोई प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश भाषा में है ही नहीं। एक है इंग्लिश, एक है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, एक है अमेरिकन, एक है ऑस्ट्रेलियन, तीन प्रोनाउंसिएशन है। हम लोग भारत में फॉलो करते हैं ब्रिटिश को, उसको कहा जाता है डेयटी या डेयटी या देवता को डेयटी कहते हैं, डीटी तो कहते ही नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है, डीटी ने डेटी, तो ऐसे बहुत सारे शब्द है। तो वो धीरे धीरे हमको पता करने है। और मन ही मन क्या करना है? छोटे छोटे वाक्यों की रचना करनी है, छोटे छोटे वाक्यों की, और वो बोलने में लाना है। यहां पर कितने विदेशी आते रहते हैं, उनके साथ में जाके बोलना चालू करो, और वो कभी भी हंसेंगे नहीं, वो नहीं हंसेंगे, उनकी तो नेटिव लैंग्वेज है, उनको तो खुशी होती है। हाँ, कई लोग, कई विदेशी ऐसे भी है कि जिनको भी वो हमारे जैसे ही है, जैसे हम हिंदी वाले हैं और इंग्लिश नहीं आती, वो स्पेनिश वाले और इंग्लिश नहीं आती है। परंतु फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं। तो आज सारे दिन भर नए नए इंग्लिश शब्द ढूंढेंगे एक काम, और क्या करेंगे, छोटे छोटे वाक्यों की रचना करेंगे, पूरी मुरली को एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा ग्रामर सीखेंगे, नए नए शब्द आते हैं, फैंसी शब्द आते हैं कुछ कुछ, उनको कैच करेंगे, अच्छा जो बोर्ड पर लिखा हुआ इंग्लिश रहता है उसको नोट करके रहेंगे, कहीं ना कहीं स्पेलिंग्स की तरफ ध्यान रखेंगे, और फिर इंग्लिश में मुरली सुनेंगे, कोई क्लास सुनेंगे, कोई मुरली सुनेंगे, प्रोनाउंसिएशन अपनी शुद्ध करने के लिए, धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे धीरे। और दूसरा, बाबा के साथ जो योग करते हो, बाबा के साथ जो बातें करते हो, वो इंग्लिश में बात करना चालू करो, उसमें व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यर्थ के लिए शब्द कहां से आएंगे। बाबा से बात करो, कैसे योग करेंगे, बाबा आई एम सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, पूरी कमेंट्री एक घंटे की हिंदी शब्द नहीं आना चाहिए उसमें। हमारा मन करेगा वापस हिंदी में आ जाओ, और एकदम शांति मिलती है बाबा से हिंदी में बात करते ही, ऐसा लगेगा बाबा से दूरी हो गई इंग्लिश में बातें करते करते, वो उधर हम इधर, होने दो, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा इंग्लिश में बातचीत करते करते करते, परंतु होने दो। इफ यू वॉन्ट टू लर्न अ लैंग्वेज यू मस्ट मर्डर इट फर्स्ट, आपको उसको मारना पड़ेगा उस भाषा को। और सारे दिन भर में जब हम सोचना चालू करेंगे इंग्लिश में, तो अपने आप मुख से निकलेगी, माइंड ये टंग को ट्रेनिंग चाहिए बस, फिर अपने आप निकलना चालू करेगा होगा। और एक काम, जोर से मुरली पढ़नी है इंग्लिश में, आईने के सामने या खुद से, ये भी जब हम अपने कानों से सुनेंगे हम क्या बोल रहे हैं, अपने आप पर विश्वास आएगा, क्लियर प्रोनाउंस करना है। और एक नोट्स बनाने हैं छोटे छोटे, छोटे छोटे डायरी पे पूरे के पूरे वाक्य लिखना है इंग्लिश के, छोटे छोटे वाक्य, अच्छे अच्छे वाक्य, जो पावरफुल वाक्य होते हैं। एक होता है हिंदी में मुरली पढ़ना, एक है इंग्लिश में पढ़ना, जो हिंदी में छूट गया वो इंग्लिश में पकड़ में आता है, कई बार नई बातें पकड़ में आती है। उसके बाद में छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ना है, हो सके तो बच्चों की स्टोरीज लेके आ जाओ, पांचवी की, चौथी की, तीसरी की, इंग्लिश की बुक्स होती है वो। वो अम्मा का उदाहरण दिया था ना उस दिन 96, तो उसके जैसा। उसके बाद में प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर्स, कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना, उनको कई बार बोलना पड़ता है। लाइक कई बार क्या करते हैं लोग, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते एक आधा कोई बीच में कठिन शब्द आ गया ना, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते मतलब वहां गाड़ी अटक जाती है। जैसे सोसाइटी तो पता है, पर सोसाइटल वो पता नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं। बाइबल तो पता है, बिब्लिकल वो नहीं पता, इसलिए वो आता है तो छोड़ देते हैं। ऐसे कई सारे शब्द है, और हर व्यक्ति ने अलग अलग प्रांत में जन्म लिया, कोई बिहार में जन्म लिया है, कोई चेन्नई में जन्म लिया है, कोई महाराष्ट्र में, कोई पंजाब में, उनकी इंग्लिश में वो भाषा, वो ट्यून रहता है, वो एक्सेंट रहती है, वो बोल रहे हैं इंग्लिश में पर पंजाबी, पता चलता है ये पंजाबी वाली इंग्लिश है, वो बोल रहे हैं इंग्लिश में पता चलता है ये साउथ वाली इंग्लिश है, वो बोल रहे हैं इंग्लिश में पता चलता है ये बंगाली वाली इंग्लिश है, बोल रहे इंग्लिश में पर पता चलता है ये गुजराती है। इंग्लिश ऐसी बोलनी है कि धीरे धीरे ये सारे एक्सेंट जो है हमारे लोकल वो सब हट जाए, प्योर इंग्लिश, जो पता ही नहीं चले सामने वाले कि ये है कहां से आदमी। वैसे ही हिंदी का भी, हिंदी भी ऐसे बोलो कि पता ही नहीं चले सामने वाले को ये कौन से देश का है, कौन से प्रांत का है, शुद्ध। इसीलिए इंग्लिश का भी लक्ष्य रखना है, धीरे धीरे जितना हो सके शुद्ध, और उसके लिए पढ़ना तो होगा, और डेली पढ़ना चालू करो। और एक चीज, अपनी आवाज को खुद रिकॉर्ड करो और सुनो, ये बहुत अच्छा, अच्छी मेथड है। अपनी आवाज को खुद रिकॉर्ड करो, जैसे अभी ये पैड लिखा है, क्या लिखा है यहाँ, रिफिल, रिफिल का अर्थ ढूंढो क्या है, पैड लिखा है, पैड का अर्थ लिखो, 80 लीव्स, लीव्स तो हमको पता है, लीफ आता है पत्तियां, फिर यहां क्यों लिखा है, ये पत्तियां है क्या, नहीं, ये पन्नों को भी लीफ कहा जाता है। तो नए शब्द पता चल गए यहाँ पे, ऑल वाइड रूल्ड, वाइड का अर्थ क्या है, नाइट एंगल या नाइट एंगल लिखा क्या है इसका अर्थ, ढूंढो। हर चीज में आपको नया शब्द मिलेगा, कहीं ना कहीं नया नया कुछ ना कुछ मिलेगा, वो सारे अर्थ ढूंढते जाना है। हम अपना ही बता रहे हैं आपको शुरुआत में। हाँ वही, उसको कोकिला कहते हैं, बुलबुल। तो हम शुरुआत में एक एक दिन में 50-50 शब्दों के अर्थ ढूंढते थे इंग्लिश, और ऐसे नहीं कि हमको पता नहीं, फिर भी ढूंढो, क्योंकि अर्थ पता है फिर भी प्रयोग में नहीं आ रहे ना, मुख से निकलने चाहिए, इसके लिए अर्थ ढूंढना है। उसी तरह हिंदी भाषा के, हिंदी सबको समझ में आती है पर बोलना थोड़ी आती है, अर्थ भी पता रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस के लिए बोलना चाहिए। जैसे हिंदी कई लोगों को समझती है पर बोल नहीं पाते, क्यों 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 क्यों, वो समझते हैं हमको अर्थ पता है, अर्थ पता नहीं है, गो एंड सर्च, हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी लो और उसमें हिंदी का अर्थ ढूंढो, भावार्थ ढूंढो क्या है। उसी तरह इंग्लिश लोग कहते हैं हमको समझ में तो आता है पर बोल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट अर्थ पता नहीं है। जब एग्जैक्ट अर्थ पता चल जाएगा ना तब बोल सकेंगे। तो आज से डिक्शनरी का प्रयोग करना, इंग्लिश की रीडिंग बढ़ाना और आपस में हो सके तो इंग्लिश बोलना जितना हो सके, और इंग्लिश में बहुत सारे गेम्स होते हैं, प्लेज होते हैं, वो देख सकते हैं, नोट्स निकालो, और जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो ध्यान से सुनना एक एक शब्द क्या क्या बोल रहा है। और एक दूसरा काम, जो हमारे बाबा की हिंदी सॉन्ग है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, क्या करना है उसको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये कितना अच्छा काम है। कोई भी हिंदी सॉन्ग ले लो, सॉन्ग्स की बुक है, या कोई भी गीत सुनो तो उसको मन ही मन इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ये शुरुआती दिनों में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पर एक समय आएगा कि ये वरदान बन जाएगा, फिर हमें वो प्रैक्टिस इतनी नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप निकलेगा मुख से। एक अंग्रेजी लेखक लिखता है, क्या लिखता है पता है, वो लिखता है कि जब मैं लोगों को देखता हूं कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खाने में पीने में चाय की टपरी में यहां वहां घूमने में भटकने में व्यर्थ की बातें करने में, मुझे लगता है अगर ये सारे लोग अपना समय अंग्रेजी के व्याकरण में लगा दे के अध्ययन में, तो हो सकता है कि सारे जीवन भर के लिए दे विल बिकम परफेक्ट स्पीकर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। कब के ये अच्छे स्पीकर बन गए होते अपने जीवन भर के लिए अगर इन्होंने ये सीखी होती तो, चाहे हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा, कोई भी भाषा, भाषा का ही तो अंतर है। ये मत समझो कि जो यहां बैठ के भाषण करता है वो ज्यादा बड़ा महारथी है और जो भाषण नहीं कर सकता वो कम महारथी है, यही तो हम गिनते हैं, नहीं तो अध्यात्म के अनुभव तो सबके समान है लगभग, केवल अंतर कितना है, किसी के पास शब्द है, भाषा है, शब्दों का चातुर्य है, शब्दों की शैली है, बोलने की कला है, बस। क्या इस आधार से वो महारथी बनता है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक व्यक्त करने की बात है बस, बाकी भाषण देने से और महारथी बनने से कोई संबंध नहीं है, भाषण देने से और धारणा का कोई संबंध नहीं है। कोई अमृत वेला पर अच्छा भाषण कर सकता है और रोज सुबह 8 बजे उठता है, भाषण का और धारणा से क्या संबंध? कोई दूसरों को कह सकते समान लो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कुछ नहीं होगा, और खुद थोड़ी सी बीमारी आ गई डर गए, छिपकली देख गए और डर गए, वो तो भाषण देना और बोलना कला मात्र है बस। परंतु हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं हमें कम से कम हर भाषा को समझना है, और इंग्लिश भाषा ऐसी है कि जिस भाषा में बहुत बड़ा एक भयंकर लिटरेचर साहित्य कैद है, क्योंकि विश्व भर के जितने विचारक हुए हैं सभी ने अपने विचार इंग्लिश भाषा में व्यक्त किए। अगर हमें अपने ज्ञान के विस्तार को समझना है, ज्ञान के दायरे को बढ़ाना है, तो इस भाषा को सीखना हो। तो आज से इसी भट्टी में एक ये नई भट्टी चालू करेंगे, इंग्लिश भट्टी, प्राणिक इंग्लिश और जितना हो सके रोज 10 नए शब्दों को ढूंढना है। कितने शब्द? 10 नए शब्द और उनके 10 नए अर्थ, और अगले दिन अमृत वेला बाबा के साथ बात करते समय उन शब्दों का प्रयोग करना है।
और हो सके तो सारे दिन भर उनका प्रयोग करना है और छोटे छोटे शब्द कंस्ट्रक्ट करो। महात्मा गांधी अपना अनुभव सुनाते हैं, जब वो पहली बार लंदन गए वो कहते थे मुझे ऐसा लॉक रहना पड़ता था, चुप मुख, क्योंकि मुझे बोलने ही नहीं आता था। और उनको एक लाइन बोलने के लिए वो कहते थे मैं 15-20 मिनट उस लाइन को माइंड में रिवाइज करता था, माय नेम इज, आई एम फ्रॉम इंडिया, ऐसे वो प्रैक्टिस करते थे। पर वही करना पड़ेगा, वही विधि है, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तो आज सारे दिन भर जितना हो सके कोई डबल विदेशी बोल मिल जाए तो उससे दोस्ती कर लेना, बोलना चलो लेट्स हैव अ राउंड राउंड नक्की नक्की पे घूम के आ जाओगे ना तो उसकी भाषा इधर और अपनी हिंदी उसको ट्रांसफर कर देना थोड़ी सी, उसको बोलना लेट आई विल टीच यू हिंदी, बस उसके लिए बहुत बड़ा लालच चाहिए, वो तो खुश हो जाएगा बोलने उसको, क्योंकि हिंदी सीखनी है आपको। वो कहानी है ना, जंगल में आग लगी, एक है अंधा एक है लंगड़ा तो दोनों मिल जाओ तो बहुत फायदा हो जाएगा तो ये आज का टूल है। एक दो तीन प्रश्न ले लेते हैं बस, और प्रश्न वही 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 है इसलिए हमने आज इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार किया इसका। बहुत सारे ऐप्स आते हैं, अगर चाहे तो अपनी क्लासेस लगा सकते हो जो स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट है, स्कूल के जो स्टूडेंट्स है।
ओम शांति भाई जी, मैं 21 दिन की प्राणिक भट्टी में जुड़ी हुई हूँ। 13वें दिन मैंने ब्लड चेकअप कराया तो उसमें बाकी सब नॉर्मल आया लेकिन कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आया, जबकि मैं पिछले 1.5 साल से दूध तेल घी की बनी हुई वस्तुएं छोड़ दिए, 2 टाइम लिक्विड 1 टाइम सॉलिड लेती हूँ। पहले मेरा वजन 53 किलो था, अभी 50 किलो है। मेरी उम्र 58, हाइट 5 फीट है। कोलेस्ट्रॉल किस वजह से बड़ा, कृपया मार्गदर्शन दे।
रोज हम ओपीडी में जितने पेशेंट्स देखते हैं ये एक सभी के प्रॉब्लम्स होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आता है, और जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है वो हमेशा यही कहता है कि हम तो कुछ भी नहीं खाते फिर भी हमारा बड़ा क्यों आता है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध बहुत सारी चीज़ों से, केवल खाने पीने से नहीं, आपकी एक्टिविटी कितनी है, वॉकिंग कितना है, एक्सरसाइज कितनी है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। और अगर लगता है ये प्राणिक यात्रा में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया है तो जीरो ऑयल डाइट पर चले जाओ, नो ऑयल। कई बार कई लोग ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बहुत ज़्यादा बादाम, बहुत ज़्यादा काजू, बुट्टी भर भर के, और दिन भर बहुत सारे जो स्मूदीज बनाते हैं उन सब में ऑयल होता है। तो अगर आपको चिंता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, द फर्स्ट स्टेप इज़ अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दो, और सेकेंड स्टेप ज़ीरो ऑयल करके तो देखो क्या होता है। एक दिन करके देखो, एक दिन कर लिया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर 3 दिन करो, 3 दिन कर लिया तो 1 हफ्ता करो, फिर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हमने खुद अपने डाइट में कितने सालों तक, 6-7 साल तक जीरो ऑयल पर थे, ऑयल का एक कतरा भी नहीं, ऑयल का प्रयोग ही नहीं किया। लोग ऐसे ही लाके देते थे ऑयल, इधर उधर बांट देते थे, तो ऑयल की जरूरत ही नहीं है अगर देखा जाए तो हमें। पर हाँ, इस यात्रा में हम कई लोगों को ये भी कह रहे हैं कि ऑयल का प्रयोग करो, थोड़ा घी यूज करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों का वजन गिरे, क्योंकि धीरे धीरे हमारा शरीर इतना स्थिर हो जाएगा कि उसे बाहर के किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो इस भट्टी का लक्ष्य है, ब्रेदारियन लेवल 4, पर वो एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 होगा, धीरे धीरे धीरे। बाकी इस शरीर को अगर ऑयल यूज ही करना है, और वो भी ऑयल जितना हो सके, फर्स्ट कच्ची घानी का तेल आता है, सेकेंड ऑलिव ऑयल, थर्ड जो भी ऑयल यूज करो हो सके उसको अनकुक्ड यूज करो। ऑयल को पकाना नहीं है, ऑयल को गर्म नहीं करना है, ऊपर से यूज करो ऑयल का, वो सबसे बेस्ट है, उसमें भी बढ़ेगा। परंतु हम यही कह रहे हैं कि पहला है, अगर जिसका बढ़ा हुआ आ रहा है जीरो ऑयल पर जाकर देखो। हर एक का शरीर अपना अपना है, कोई इतना ऑयल खाते फिर भी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आता है, कोई कुछ भी नहीं खाते फिर भी बढ़ा हुआ आता है। ये शरीर बहुत चमत्कारिक है, इसका कुछ समझ नहीं आता है ये कैसे बिहेव करता है। और रिसर्चेस, साइंस, अरे अलग ढेर सारी अलग अलग थियरीज, अपने शरीर पर आप खुद प्रयोग करके देखो। अभी कोई कोई भाई बहने हैं जिनका हीमोग्लोबिन 8 आया प्राणी की यात्रा करते करते, जैसे ही ब्लड रिपोर्ट देखे डिप्रेशन में चले गए, सारे डिटॉक्स चालू हो गए। पहले अब तक ठीक चालू था, जिस दिन देखा एकदम उमंग उत्साह में लैब में गए कि अब देखते देखा मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल आता है, फिर ग्रुप में पोस्ट करेंगे ये मेरे रिपोर्ट है। इसमें अहंकार भी छिपा है थोड़ा कि देखो मैं ये करता हूं तो मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, सबको जाके दिखाऊंगा। और जैसे रिपोर्ट कराते कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, यूरिक एसिड ज्यादा, शुगर बॉर्डर पे, चुपचाप बिल्कुल कोई चर्चा नहीं, अंदर रख दो चुपचाप रिपोर्ट्स, किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं करना। अगर कोई पूछे ब्लड की है कहां, बोलेंगे हाँ करने वाले हैं। तो इसमें क्योंकि शरीर के साथ में कभी भी हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, कोई ये कह ही नहीं सकता कि मेरा मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं एकदम निरोगी हूं, मुझे कुछ नहीं है, ऐसा कहना बड़ा खतरा है। अगले दिन कुछ के कुछ निकल जाएगा, इसीलिए थोड़ा धीरज से, और जो भी रिपोर्ट्स आते हैं उनको स्वीकार करना है, अहंकार नहीं रखना, ये रिपोर्ट है, ये साइंस की रिपोर्ट है, ठीक है, हम अपने तरीके से अपना कोशिश सब करेंगे। और जो भी आपको लगता है ट्राई करके देखो, जिससे वो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, वो शुगर नॉर्मल हो जाए, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाए, और चेक करते रहो। वो भी एक टूल है, वो भी जरूरी अहंकार को तोड़ने के लिए, नहीं तो इस यात्रा में व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाता है। नेक्स्ट,
शुरू से ही हो रही है 108 दिन। ओम शांति भाई जी, मैं एक कुमारी हूँ और हाइट इज 5'3", वेट इज 44। प्राणिक यात्रा शुरू से ही हो रही है, 108 दिन की भट्टी शुरू से ही अटेंड करी है, और हम सभी लोग अभी ज्ञान सरोवर आए हुए थे। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी क्लास की टाइमिंग्स ऐसे एडजस्ट कर लें कि हम लोग की आए, क्लास अटेंड करें और चले।
ओम शांति भाई जी, मेरा सवाल है कि 2 दिन पहले आपने ब्रह्मचर्य पर एक पॉइंट बोला था कि हमें भाव को बदलना है, तो हम सिर्फ भाव को ही बदलेंगे, और यही मैंने समझा है जो राइट है, और भाव को कम नहीं करना है, ऐसा तो कुछ लाइन नहीं था ब्रह्मचर्य के लिए, राइट, कि भाव को कम करना है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, हमें सिर्फ भाव को बदलना है, चेंज करना है, जैसा सोचेंगे वैसा भाव उत्पन्न होगा। तो क्या मैंने सही समझा है? काइंडली आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करिएगा। थैंक यू बाबा,
भाई जी, भाव को बदलना
है, ओम शांति,
भाव को कम करना वस्तु थोड़ी है।
शांति भाई जी, मैं बीके डॉली दिल्ली से, एज 37, वेट 64.35, फर्स्ट डे था और आज 64.55 है। हाइट है 5'7" और वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिटॉक्स सिम्टम नहीं, कुछ भी नहीं, हल्कापन बहुत है, और मुरली भी जैसे पढ़ती हूँ तो वो पहले याद नहीं रहती थी, अब बिल्कुल याद रहती है, अच्छा भी लगता है, अंदर ही अंदर एक खुशी भी है, बट नींद कम नहीं हुई मेरी, पहले जहाँ तक मैं 4 आवर ही सो पाती थी, और अभी तो सारा दिन ऐसा लगता है सोती रहूँ, अमृत वेले भी उठ जाती हूँ 2 बजे, बट उसके बाद उठ के मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, बस नींद का ही अंश रहता है, बस लगता है सोती रहूँ।
नींद का अपना एक पुरुषार्थ है, और थोड़ा सा हर एक को अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी नींद की, जरूरी नहीं है 2 बजे उठना है, पहले तो अपने उठने का टाइम थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि 2 बजे उठने वालों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो दिन भर उनको नींद आती है, या मुरली में नींद आती है, या 4 से 5 के बीच नींद आती है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। उठने का टाइम थोड़ा चेंज करके देखो, और कई लोगों को हार्डवर्क होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, नींद का समय नहीं मिलता है, इसलिए उस दिन भी कहा था पावर नैप, 3 चीज़ों का प्रयोग करो, योगासन, योग निद्रा का प्रयोग, पावर नैप का प्रयोग और शवासन, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, पवन आप तो बता दीजिए।
ओम शांति भाई जी, भट्टी अच्छी चल रही है, बस थोड़ा वेट लूज हुआ है, बीच में बढ़ा भी था, अभी तो 21 डेज के बाद क्या करना है वही दिमाग में प्लानिंग चल रही है। अभी लास्ट वीक में मेरा इमोशनल डिटॉक्स हो रहा है कुछ पेनफुल मेमोरीज के साथ, जिसमें 2 साल पहले मेरे 22 साल के बेटे ने शरीर छोड़ा था। मुझे लगा था कि ज्ञान बल से सब कुछ पार कर लिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि अंदर कितना कुछ भरा था। अगर अब 21 डेज के बाद सॉलिड पर जाते हैं तो इतना आगे आ चुके हैं, वो रिवर्स हो जाएगा। तो लग रहा है कि कुछ दिन और कंटिन्यू लिक्विड पर ही रहना चाहिए, क्या पता कुछ चमत्कारी ऐसे मिराकल्स अनुभव हो जो कभी सोचे ही नहीं।
कर सकते हैं कुछ दिन, भट्टी के कुछ दिन बाद भी कुछ लोग लिक्विड्स पर रह सकते हैं, परंतु सॉलिड फूड से डरना नहीं है, सॉलिड फूड पे जाना होगा। एक बार जाओ, देखो, अनुभव करो तो और पक्का होगा। यू हैव टू ईट अनहेल्दी फूड Once in a while to stay on the path. इस मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है तो सॉलिड फूड एक टूल है, सॉलिड फूड भी एक टूल है। किस लिए? क्योंकि वो जाओगे तो फिर दुख होगा, फिर शरीर में भारीपन लगेगा, फिर क्या क्या होगा, और वो सब होने के बाद में भी छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि पुराना एडिक्शन वापस आ जाएगा। फिर लगेगा इतना खाऊं, नाश्ता भी खाऊं, चटोली भी खाऊं, दोपहर का ब्रह्मा भोजन भी खाऊं, और कहीं होगा वहां पर भी जाऊं, अनइनवाइटेड गेस्ट, क्या खाऊं, और कमरे में भी बहुत सारा भर भर के रखो, जो फ्रिज खाली हो गई है फिर से भर दोगे पूरी फ्रिज वापस, सेम वही सारे संस्कार ये सब होगा। ये जरूरी है, पर तो पुराने दिनों की याद आएगी फिर।
बहुत शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने के लिए। 9 डेज के बाद मैंने सोचा था कि मैं बस 9 दिन की ही करूंगी, लेकिन आपने बोला कि सॉलिड के आगे घुटने नहीं टेकना, तो मैंने कंटिन्यू करी है। मेरा नाम विभा है, मेरी हाइट 5 फीट है और मेरा वेट 63-64 के बीच में ही स्टेबल रह रहा है और लिक्विड डाइट अच्छी चल रही है। बाकी मुझे एक प्रश्न पूछना था कि एक बहन है जिनको 1 साल पहले कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, और उनका अब 1 साल हो चुका है, ऑपरेशन भी हो चुका है, ट्रीटमेंट सारा खत्म हो गया है, मेडिसिन भी सब ऑलमोस्ट बंद हो गई है, तो क्या वो ये लिक्विड डाइट ले सकती हैं?
आइडियल कैंडिडेट है, जिन्होंने दुख को अनुभव किया है, बीमारियों को अनुभव किया है, उनके लिए तो इससे अधिक अच्छा संसार में कुछ भी नहीं है। जिन्होंने जाना है कीमोथेरेपी क्या होती है, ऑपरेशन क्या होता है, हॉस्पिटल के विजिट्स क्या होते हैं, सीटी एमआरआई, ये सब चक्कर हॉस्पिटल और ये सब स्कैनिंग, इतना खर्चा, और ये सब जिन्होंने जाना है उनके लिए तो ये वरदान है, उन्होंने तो तुरंत जाना चाहिए इसके ऊपर। बाकी लोग तो नहीं जाएंगे, जो अभी स्वस्थ है, हेल्दी है, सॉलिड एंजॉय करते हैं, उनके लिए अभी टाइम है, अभी नहीं आएंगे।
ओम शांति भाई जी, मेरा नाम निधिका है, भट्टी बहुत अच्छी चल रही है। भाई जी एक क्वेश्चन है, थोड़े दिन पहले किसी ने बोला कि अगर हम ऑनियन और गार्लिक नहीं खाते तो हमें कलौंजी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये ऑनियन फैमिली से है, क्या ये बात सही है, प्लीज बताएं।
थैंक यू, शांति। ऑनियन और गार्लिक, इस ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कल चर्चा करेंगे, परंतु बात है कलंजी की। तो कलंजीज आर अनियन सीड्स, दे आर अलाउड। वैष्णव परिवार में भी कलंजी को अलाउ किया जाता है, भले उनको वो उसी ग्रुप के हैं, उनको अनियन सीड भी कहते हैं इंग्लिश में, परंतु वो अनियन और गार्लिक नहीं है, वो वैष्णव भोजन में इंक्लूड किया जाता है। हाँ, वो एक स्पाइस है, हर्ब है, जो मसाले की तरह या हर्ब की तरह या स्पाइसेस की तरह यूज किया जा सकता है और सब लोग करते हैं, तो चाहे तो कर सकते हैं उसको। काला क्या कहते हैं, काली तिल कहते हैं, काली तिल, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं और उस पे स्वाद आता है। अभी ऐसी हजारों चीजें संसार में हैं, क्या क्या यूज करोगे करना है तो करो, बट वो उस कैटेगरी की नहीं है, अनियन और गार्लिक वाली, इसलिए यूज किया जा सकता है।
ओम शांति मानात्मा भाई जी, आपने हम प्राणिक लिविंग जो क्लास स्टार्टिंग से एज पर योर गाइडेंस में हम लोग ऐसे ही फॉलो करते आ रहे, लेकिन आज आपने कहा कि आगे आफ्टर 6 डेज हमको क्या करना है, आज से हमको प्लानिंग करनी है करके। वैसे तो हमको लिक्विड डाइट लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फिर हम यूज भी हो गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी हमको लेवल 4 में पहुंचना है तो क्या करना है आपको ही गाइड करना पड़ेगा भाई जी, हमको कुछ आइडिया नहीं है। एज पर योर गाइडेंस हम ऐसे करेंगे, क्योंकि आप बहुत ब्रिदारिन से आपका कनेक्शन भी है, फिर आप उनके बारे में जानते भी हो, इसलिए अभी लेवल 4 में पहुंचने के लिए भले इट मे टेक 1 ईयर, आपने कहा कि 1 ईयर 2 ईयर, फिर भी उसके लिए हमको क्या करना है, उस लेवल में पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, ये
ऐसी कोई विधि, कोई मार्ग, कोई टूल नहीं है जो लेवल 4 तक ले जाए। वो अपने आप होगा, अपने आप। शरीर धीरे धीरे, जैसे अभी लिक्विड डाइट में इतना सेट हो गया है कईयों का कि उनको लग ही नहीं रहा है कि आप सॉलिड को छोड़ दिया है करके, इतना स्वस्थ लग रहा है, इतना निरोगी लग रहा है, ऐसा लग रहा है नेचुरल है। और उन्हीं के लिए फिर धीरे 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 आप धीरे धीरे एक एक चीज, जैसे पता चलेगा ये केला बहुत भारी है मेरे लिए नहीं है, हटा दोगे। फिर पता चलेगा ये चीज मेरे लिए बहुत भारी है, हट जाएगी। हटते हटते बहुत सारी चीजें हटती जाएगी और वेट स्टेबल होते रहेगा, अपने आप पहुंचोगे वहां तक। कोई भी विधि नहीं है जो आपको वहां तक पहुंचा दे, और हर एक की विधि अपनी अपनी होगी, किसी एक की एक विधि नहीं हो सकती। और इस भट्टी का लक्ष्य लेवल 3 था बस, लेवल 4 नहीं। वो अपने आप कभी लेवल 3 से लेवल 4। अभी हमने इस भट्टी में कहा था कि टाइम की कोई सीमा नहीं है, जो लेना है कुक्ड रॉ सब ले सकते हैं। फिर हमने ये भी कहा था वीगन नॉन वीगन जो लेना है, मिल्क लेना है तो लो। फिर धीरे धीरे आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि ये सब मैं जो एक्स्ट्रा लेता हूँ ये मुझे जरूरत नहीं है इसकी। वो हटते जाएगा, हटते जाएगा, हटते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। आप धीरे 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 यू विल कम टू वाटर। एक समय आएगा कि एक ग्लास पानी पी लिया बस इतना पेट भर जाएगा, किसी चीज की आवश्यकता। परंतु ये अगर जबरदस्ती किया तो सीधा हॉस्पिटल, आईसीयू, डेथ। इसके लिए ये सब करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है सॉलिड की दुनिया भी एंजॉय करो, लिक्विड की दुनिया भी एंजॉय करो, खाने की दुनिया भी एंजॉय करो, पीने की भी दुनिया एंजॉय करो, और न खाना न पीने की भी एंजॉय करो, तीनों दुनिया एंजॉय करो। कभी उसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी इसमें। और संगम युग है, आनंद का युग है, मौजों का युग है, मौज करते रहो, खाओ पियो मौज करो, ना खाओ पियो और ना खाओ पियो करके भी मौज करो। ओम शांति।
तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव, विजय भव, गगन कहे विजय भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजय भवा। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव, गगन कहे विजय भव, विजय भवन।